السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پڑھ چکے تھے آیا آئی تھنک لام ان دعات کی مخارج تک نا، تو یہاں تک حافت اللسان، یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے. کسی بھی پیچھے کسی بھی لیٹر کے سے ریلیٹڈ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے، کیونکہ آج ہم لاسٹ پوائنٹ آف ٹنگ شروع کریں گے، بورف اللسان، ٹپ آف دا ٹنگ، جس کو رأس اللسان بھی کہتے ہیں، ہیڈ آف دا ٹنگ اور ٹپ آف دا ٹنگ بھی کہتے ہیں. سو نو کوشچنز، الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافت اللسان کے بعد جو اب ہمارا پارٹ آف ٹنگ ہے وہ ہے رأس اللسان یا طرف اللسان، بالکل ہیڈ اینڈ دا ٹپ آف دا ٹنگ. اس سے بہت سارے سب مخارج آتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک وائڈر ایریا ہے یا ٹپ آف ٹنگ، ڈفرینٹ پارٹس کے اوپر ہٹ کر کے ہمارے پاس بہت زیادہ ویریشن لے کر آتی ہے. جی ادن اللسان ہے، وہ کسی بھی لیٹر کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو ہم ادن اللسان میں سے صرف ٹپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو فرنٹل پارٹ آف دا ٹنگ ہے اس میں سے آپ صرف ٹپ استعمال کرتے ہیں. کچھ لیٹرز کے لیے گوہر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹاپ آف دا ٹنگ بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اوکے، ٹپ آف ٹنگ سے جو لیٹرز آتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان میں سے مخرج دیکھیں گے نون کا. اب تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں سٹرکچر آف روف آف دی ماؤتھ کو. جو روف آف دا ماؤتھ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں نا جو فرنٹل پارٹ ہے، شروع کا سب سے جو پہلا حصہ ہے وہ تھوڑا سٹریٹ ہے، یعنی وہ بالکل سٹریٹ آتا ہے ڈوم سے پہلے پہلے، جس کو ہم نے گم ایریا کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کا فرنٹل پارٹ آف روف آف دی ماؤتھ ہے، اگر آپ اس کے اوپر اپنی ٹنگ کو یوز کریں تو وہ تھوڑا سٹریٹ ایریا ہے ابھار تک، اور اس ابھرے ہوئے حصے تک ہم اس کو نا گم ایریا شمار کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس خیال کرتے ہیں کہ شاید جو گم ایریا ہے وہ ایگزیکٹلی گم لائن ہے، مگر ایسا نہیں ہے. گم لائن سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ اس ابھرے ہوئے حصے تک آپ کا جو گم ایریا ہے وہ جاتا ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، جیسے بچوں کے بھی جب دانت گرتے ہیں تو ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ جو ٹیتھ کا سائز آپ کو آؤٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ اتنا ہی نہیں ہے، تقریباً اتنا ہی دانت اندر کی طرف بھی ہوتا ہے، جس کو ہم روٹ آف روٹس کہتے ہیں، ٹیتھ کی جو روٹس ہیں وہ. تو جہاں تک یہ روٹس جاتی ہیں نا، وہاں تک آپ کا گم ایریا، آپ کا گم ایریا وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے دانت آپ کے گم سے اٹیچ ہیں، اور پھر جہاں اندر تک ان کی روٹس جا رہی ہیں وہاں تک یہ آپ کا گم ایریا شمار ہوتا ہے. تو یہ آلموسٹ اس ابھار تک، آپ کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے اس تک آپ کو یہ گم ایریا مل رہا ہوتا ہے. تو جو لیٹر نون ہے، یہ جب آپ کی ٹپ آف ٹنگ، زبان کی جو نوک ہے، وہ فرنٹل انسائزرز کے گم کے ابھرے ہوئے حصے کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، تو آپ کا لیٹر نون ادا ہوتا ہے، ठीक है, यानी जो आपकी टिप है जबान की नोक, जब वो आपके सामने के जो दो दांत हैं उनके उभार से, उभरे हुए हिस्से से टच करती है, बिल्कुल जब रूट्स खत्म हो रही हैं, जब वहां पे टच करती है तो आपका नून अदा होता है। नून के अंदर ना जो आपकी साइड्स ऑफ टंग है वो इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। लेटर नून में आपकी साइड्स ऑफ द टंग इन्वॉल्व नहीं होती, यानी आपकी, आपने ना जबान को यूं फैलाना नहीं है। इसमें इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी जो टिप है वो ही लगे, यूं आपने इसको साइडवेज टंग को फैला कर बहुत ज्यादा नून को अदा नहीं करना। अन अन, ठीक है। और हिट के फौरन फौरन बाद साउंड आपकी नाक में ट्रेवल करती है, क्योंकि नून के अंदर थोड़ी नेजल साउंड होती है, सही। एंड इसको हम बाद में इंशाल्लाह ज्यादा डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो नून में टिप ऑफ टंग सामने के ऊपर के जो दो दांत हैं उनके गम्स के उभार से टच हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट मखरज है, नहीं, गम लाइन से पीछे आपकी टिप टच करती है, गम लाइन से थोड़ा सा पीछे है ना उभरा हुआ हिस्सा, तो वहां पर आपने टच करना है। आप ये कह सकते हैं स्ट्रेट पार्ट का जो बॉर्डर लाइन है ना, वो जहां से आगे डोम बिल्कुल शुरू हो जाता है, तो डोम से पहले जो आपका हिस्सा है वहां पे आपने टच करना है, बिल्कुल रासुल लसान, जो बिल्कुल टिप ऑफ टंग है ना वो आपने वहां पे हिट करनी है। ये तो हमारा लेटर हो गया नून। नून के बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो है रॉ। रॉ जो है वो भी इसी जगह से आता है, लेकिन थोड़ा सा उसका मखरज डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको एक मखरज में नहीं लेते, ठीक है। जैसे कॉफ और काफ का स्लाइट डिफरेंस था, ऐसे ही नून एंड रॉ में भी डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपके दो डिफरेंट मखारिज हैं, यानी नून इज अनदर मखरज और उसके बाद रॉ जो है वो दूसरा मखरज है। सही। तो रॉ में क्या होता है कि जो आपकी टिप है, टिप के साथ साथ आपका टॉप ऑफ टंग भी इन्वॉल्व होता है, यानी रसुल लसान के साथ आपका जहर, उसको हम कहते हैं जहर उल लसान, जबान का जो टिप के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है टिप के साथ ही वो भी इस्तेमाल होता है, यानी टिप प्लस टॉप रॉ के लिए। तो जब टिप एंड टॉप दोनों लेटर्स, आई मीन दोनों पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो और ये लगेगा उसी उभार के ऊपर, उभार के फौरन बाद तो आपका डोम, आपका पैलेट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पैलेट पर हमने नहीं जाना, गम एरिया से हम बाहर नहीं निकल सकते। तो जो टिप है ना वो हल्की सी नून की प्लेस से आगे हिट होती है, और जो टॉप है वो एग्जैक्टली कहाँ हिट होता है, उस उभार के ऊपर, ठीक है। जो टिप ऑफ टंग है आपकी वो कहाँ जाती है, वो नून के मखरज से थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे मुंह की जानिब हिट होती है, और जो टॉप ऑफ टंग है वो एग्जैक्टली आपका रूफ ऑफ माउथ के, वो जो उभार है उसके ऊपर हिट होता है, रूफ ऑफ माउथ के ऊपर जो वो गम का एरिया जिस जो उभरा हुआ है ना उसके ऊपर हिट होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली नून के मखरज के बहुत करीब है। इनफैक्ट नून के मखरज के ऊपर ही हिट हो रही होती है, यानी उस उभार के ऊपर ही हिट होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर जौहर जो टॉप है ना आपका वो उभार पे हिट होता है, और टिप आपकी थोड़ी सी नून से आगे हिट होती है गम लाइन के करीब मुंह की जानिब, सही। तो ये बहुत एक दूसरे के करीब करीब मखारिज हैं नून एंड रॉ। है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेटर नोन जो है वो बिल्कुल टिप आपकी उभार के ऊपर लगेगी, और रॉ में टिप थोड़ी सी उभार से आगे, और रॉ के लिए वहर जो है वो आपका उस उभार के ऊपर लगेगा। रॉ जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेटर है, जैसे मैं आपकी रीडिंग में भी सुन रही थी तो मैंने अभी तक रॉ की करेक्शन को थोड़ा साइड पे रखा हुआ है, लेकिन रॉ एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। इसमें आपने जिस चीज का ध्यान रखना है रॉ को बोलते हुए, वो ये कि चूंकि हम इंग्लिश में जो रॉ बोलते हैं वो हमारा जो रॉ है वो आर वो टिप से नहीं आता, वो जबान की साइड से आता है आर, यानी आप उसमें टिप को इतना रोल करते हैं कि आपकी टिप जो है डोमी एरिया में चली जाती है और कहीं रूफ को टच नहीं होती, जबकि जो अरबिक में रॉ है वो आपका यहां से आएगा जो मखरज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो हम इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे, जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा प्रॉपर मखरज ऊपर रूफ को टच हो रहा हो। मखरज आपका यानी टिप आपकी स्किप नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरी जिस चीज का आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जबान साइडवेज फैले नहीं, ठीक है, अतराफ की तरफ फैले नहीं। अगर आपकी साइड्स ऑफ टंग दांतों को लग जाती है ना, जो जबान की साइड्स हैं, अगर आपकी साइड्स दांतों को लग जाती हैं, साइड साइड वाले दांतों को लग जाती हैं, तो उससे भी ना सांग खराब हो जाती है, उससे साइड के ऊपर प्रेशर जाने लग जाता है और टिप के ऊपर अच्छा प्रेशर नहीं आता। इसको प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसको नून के साथ प्रैक्टिस करें। अन अब ऑलमोस्ट चूंकि बहुत करीब है तो आप ना उसी तरह से देखें कि क्या आपकी टिप टच हो भी रही है या नहीं हो रही, कि जैसे नून के लिए आप हिट कर रहे हैं टिप को ऊपर रूफ के, तो रॉ के लिए बस थोड़ा सा टिप को आगे कर दें, उसके साथ प्रैक्टिस करें टू मेक श्योर कि क्या वाकई आपकी टिप ऑफ टंग हिट हो भी रही है या नहीं हो रही। फिर साइड ऑफ टंग की जब इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो रॉ में ना एयर साउंड आने लग जाती है, यानी अब अब ये साउंड, तो मेक श्योर कि ये भी साउंड नहीं होनी चाहिए आरू आरू, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज का भी ध्यान रखें कि जब हम रॉ को अदा करते हैं तो जो आपका हिट है अल्हम्दुलिल्लाह वो मीडियम होना चाहिए, बहुत ज्यादा जोर से आपकी टंग नहीं लगेगी। जो आपकी यानी आप देखें कि जब आप लेट इंशाल्लाह आगे हम जाके ये डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे, जब आप लेटर को हिट करते ना तो लेटर को हिट करने की एक स्ट्रेंथ है, तो ये जो स्ट्रेंथ है ना आपकी ये मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत टाइट हो ना बहुत लूज हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, बस मीडियम, बिल्कुल ऐसे जैसे आप नून के लिए हिट करें, अन अर उसी स्ट्रेंथ के साथ हिट करें, ठीक है। अच्छा फिर इसमें रॉ में जैसे आपने तकरार का लिखा तो इसमें ये जो साउंड आती है ना वाइब्रेशन की, ये असल में इसी वजह से होती है कि आप हिट मीडियम रखते हैं, तो जब आपकी टिप ऊपर रूफ के साथ टच होगी तो आपने ना उसको मखरज के ऊपर रहने देना है और बिल्कुल हल्की सी स्पेस देनी है, ठीक है, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी वहां पे स्पेस क्रिएट करनी है, रॉ को मखरज से हिलाना नहीं है, वहां हल्की सी स्पेस देकर आपने वंस और ट्वाइस ट्रिल करना है, वाइब्रेट करना है साउंड को, अरु अरु, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी साउंड में बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन के साथ ये यानी ये जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है या वाइब्रेशन ऑफ साउंड है ये बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपका रॉ दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वंस और ट्वाइस, यानी आरो आरो। फिर इसमें एक और चीज का भी ध्यान रखें कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो कि रॉ के अंदर ये कॉमन एरर करते हैं, दे डू हैव अ गुड मखरज, दे डू हैव लाइक द गुड हिट, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडरेट होना चाहिए, यानी उनका रॉ हर तरह से बेहतर होता है, मगर जब रॉ साकिन आता है ना, तो वो अपनी जबान को मखरज पे रोक नहीं पाते, तो जबान क्या करती है, फौरन बाउंस बैक करती है, मखरज को छोड़ती है, अरो अरो, ये साउंड आती है उनकी, अरो अरो। अब आप देखिए पिच चेंज हो रही है, दैट्स अ कलकला, इसको हम कलकला के अंदर शुमार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी साउंड पलट रही है, आप मखरज पर हिट करके फौरन मखरज को छोड़े, कलकला में यही होता है। ठीक है, तो ये साउंड नहीं आनी चाहिए। स्टिक योर टंग ऑन द मखरज फॉर अ वाइल, थोड़ा सा टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए आपने अपने मखरज को, अपने यानी जब आपने रॉ को अदा किया है, तो आप अपनी टिप को वहां स्टिक कर दें। अगर आप फौरन हिलाएंगे ना और डोमी एरिया में ले जाएंगे, तो ये इस तरह की साउंड आएगी, आरो आरो, नहीं आरो आरो। अब आप देखें कि इसके अंदर साउंड के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है, आरो नहीं आरो आरो, इसी तरह से आरो, और अरी, या जैसे वर्ड है अल आरो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर कॉमन बात है, हम अब जानते हैं कि रॉ जो है वो वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल से लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वर्ड्स में ऐसा होता है कि रॉ फतहा के साथ हो, या अगर रॉ से पीछे फतहा हो, तो वो हैवी ही पढ़ा जाता है। इसमें फिर आपने इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रीसीडेड लेटर बोल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका प्रीसीडेड लेटर हैवी नहीं होना चाहिए। यानी जब आप वर्ड बोल रहे हैं अरु, मेक श्योर इट्स नॉट और अ, नहीं बोला, हमजा को अलग लाइट करें, अरु, और फिर रॉ को हैवी करें। ठीक है, ये आपने इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। फिर मैंने जो एक चीज नोट की वो ये कि स्टूडेंट्स को हैवी रॉ बोलने में इतना इशू नहीं होता जितना कि लाइट रॉ बोलने में इशू होता है। ठीक है, तो इसमें आपने फिर इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रॉ को लाइट करते हैं, तो आप अच्छी तरह से रॉ को हिट करें हो। ठीक है, यानी इर इर, ठीक है, मखरज के ऊपर हिट हो, उसमें एयर ना हो, उसमें बाउंस ना हो, उसकी साउंड जो है वो हैवी रॉ ही की तरह हो, यानी साउंड रॉ की साउंड में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, सिर्फ हैवीनेस में और लाइटनेस में डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो कॉमन एरर्स हो गए रॉ के। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अबाउट नून। नून में बहुत ज्यादा कॉमन एरर्स नहीं पाए जाते, इसकी एक वजह यह है कि हम उसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन नून को अदा करते हुए जस्ट बी केयरफुल अबाउट कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि जब नून साकिन होता है, तो इसमें हमने एक तो साउंड को हिलाना नहीं है, दूसरा जब आप साउंड को हिट करें, तो आप उसको थोड़ा टाइम दें, मीडियम मॉडरेट टाइम इसका होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बसमल्ला ही पढ़े होते हैं, तो हम कहते हैं वर्ड अर्रहमानी रहीम, सॉरी दैट्स अ मीम, अर्रहमान। इसमें अब आपने क्या करना है, आपने टिप को मखरज को नून के ऊपर हिट करना है। ठीक है, फिर आपने वहां पर उसको हिलने नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे बोलते हैं अर्रहमान, खास तौर पर जब एंड कर रहे होते हैं, बीच में फिर नहीं, लेकिन जब एंडिंग करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि वो नोन उनका फॉरन बाउंस करता है। तो आपने इसको बाउंस नहीं करना। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये कि नोन की आवाज आए, यू मस्ट हियर योर नोन, यानी ऐसे नहीं होना चाहिए अर्रहमान, वो नून कहीं गायब है, नून की आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, कैसे पढ़ेंगे अर्रहमान मान, यानी आपको आवाज आनी चाहिए। आप लॉन्गर गुन्ना नहीं करेंगे, ज्यादा देर वहां नहीं ठहरेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी नून की आवाज प्रोमिनेंट हो, ऐसा ना लगे कि जैसे आपने नून अदा ही नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज का जो है थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। सॉरी, दूसरी चीज जिसका ध्यान आप रखेंगे वो ये कि चूंकि नून में हर सूरत में नेजल साउंड है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये नेजल साउंड नून से प्रीसीडेड लेटर में ना जाए, ना पीछे वाले लेटर में, ना फॉलोड लेटर में, क्योंकि अमूमन ये चीज भी देखने में आती है। यही वजह है कि जब हम एंड करते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब हम ये वर्ड बोलते हैं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की यहाँ पर क्या साउंड आती है, रब्बिल आलमीन, यानी मीम से नेजल साउंड शुरू होती है, या में जाती है, नून में जाती है, मीन नहीं, इट्स नॉट मीन, इट्स मीन, मीन। ठीक है, बीच में या है, या में आपने नाक की तरफ साउंड को पुश नहीं करना। इस तरह से आपने इसका ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से जैसे अगर हम बोलते हैं वर्ड ना, सिंपल ना, नी, नो, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड में, तो मेक श्योर के इट शुडन्ट बी ना ना, नहीं ना ना, नी नहीं, नी नी, नू नहीं, नू नू। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो आगे वाला लेटर है उसमें नेजल साउंड आपकी नहीं जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको, इन दो तीन चीजों को, नून को अदा करते हुए आपने बस अपने माइंड में रखना है, वरना जनरली नून के मखरज में एज सच बहुत एरर नहीं होता, क्योंकि हम उसको इंग्लिश में भी यूज करते हैं और उर्दू में भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दो मखारिज हमने पढ़ लिए, नून एंड रॉ। अब हम नेक्स्ट अपना मखरज देखते हैं, लेटर नून और रॉ के बाद, जिसको हम कहते हैं हुरूफुन नत्बाइया। ठीक है, अन नत्बाइया, ये लेटर्स होते हैं ता, दाल एंड तो, ता, दाल एंड तो। ओके, तीन लेटर्स हैं हमारे पास नत्बाइया में, हरूफ नत्बाइया में हमारे पास थ्री लेटर्स हैं। इनका मखरज देख लेते हैं और फिर हम इनमें से एक एक लेटर का थोड़ा कॉमन एरर्स देख लेते हैं इंशाल्लाह। मखरज इनका है जब टिप ऑफ टंग, सामने के जो दो दांत हैं सनाया उलिया, उनकी गम लाइन से टच करती है। ठीक है, टिप ऑफ टंग कहां टच करती है, एग्जैक्टली गम लाइन से, नहीं नक तो आई है, नून से है ये वर्ड। मुझे नहीं पता आप में से आप लोगों के पास नोट्स हैं, अगर नोट्स हैं तो उसमें ये लेटर्स मेंशन हैं अपने नामों के साथ ना, बुक है नोट्स, आप एडमिन देख लीजिए, मैं जो नोट्स हैं वो नूरुन अला नूर वाले कोर्स में स्प्रेड किए गए थे, तो आप उनसे लेके ना इंशाल्लाह जो इन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, वो एक लेआउट सा है हाँ जी, वो लेआउट से है तो वो इंशाल्लाह इनको फायदा देगा बहुत ना। ओके मिले हैं, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर ना जीतन के पास नहीं है और वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, तो आप एडमिन से बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको वो लिंक दे देंगे या नोट्स आपको भेज देंगे, जिस तरह से भी यानी उनका मेथडोलॉजी होगी। ठीक है, सही। तो इसमें ये जो लेटर्स हैं ये है अनबाइया, अलिफ लाम नून दो आइन या एंड अराउंड डटा। ओके, फिर इसमें नबाइया के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं वो है टा, अलिफ बा टा, टू डॉट्स वाला, दाल एंड दो। दो वाला जो होता है वो, तो सबसे पहले हम लेटर टा को देखते हैं, हर्फ टा। अच्छा एक चीज इन तीनों लेटर्स में आपने ध्यान में रखनी है और वो ये कि यूज योर टिप ऑफ टंग। आपने जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ता दाल, नॉट दो, क्योंकि हम दो को एज इट इज नहीं बोलते, ठीक है, तो ही करके बोलते हैं, बट दैट्स समथिंग डिफरेंट। ता और दाल, आप बोले ता दा, आप एक चीज फील करेंगे और फिर फील करें कि विच पार्ट यू आर यूजिंग फॉर ता एंड दाल। आप एक चीज फील करेंगे कि योर टिप इज नॉट हिटिंग एनीवेयर, जो चीज आप हिट करें हैं दैट इज ज़हर, दैट इज टॉप ऑफ दी टंग। आप करें और मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें कि क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम उर्दू में जिस तरह से बोलते हैं ना, हम टिप के लिए कॉन्शियस नहीं होते, हम दादा दा 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 बोलते हैं, दादा में आपकी जो टिप है वो गम लाइन को नहीं हिट करती, एटलीस्ट मुझे तो लगता है वो थोड़ी बहुत एयर में ही है, और ज्यादा हिस्सा जो आपका हिट करता है वो टॉप ऑफ टंग है। अब जब अरबिक में आप टॉप से इन दो लेटर्स को बोलेंगे इंक्लूडिंग बॉ, तो ये साउंड के ऊपर इफेक्ट करता है, आपकी साउंड कभी भी परफेक्ट नहीं होती अगर आप टॉप ऑफ टंग यूज करके, वहर यूज करके अपने इन तीन लेटर्स को अदा करेंगे। दाल की साउंड मोटी मोटी आती है, ता की साउंड बहुत मोटी आती है, और उसमें भी यानी थोड़ी मोटी इन अ सेंस नॉट हैवी मगर स्प्रेडी, स्प्रेडी बारीक नहीं होती, जैसे एक शार्प साउंड होती है ना वो नहीं होती। जैसे आप ये समझें कि जब बच्चे राइटिंग करते हैं ना तो टीचर्स उन्हें कहते हैं कि पेंसिल का शार्प लेड बनाए, तो अगर आप शार्प लेड से नहीं लिखते, थोड़ा मोटे लेड से लिखते हैं, तो वो राइटिंग और शार्प लेड से लिखने की राइटिंग में डिफरेंस होता है। बिल्कुल इसी तरह से शार्प टिप और जोहर से जो साउंड आती है उसमें यही ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा होता है कि ये थोड़ी फैली फैली स्प्रेडी स्प्रेडी साउंड होती है, थोड़ी मोटी मोटी आवाज लग रही होती है, मोटी नॉट इन अ सेंस ऑफ हैवीनेस। ठीक है, तो ये जो साउंड है इसको आपने बारीक शार्प कैसे करना है, यूज योर टिप, मेक श्योर आप अपनी टिप को इस्तेमाल करें। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, जैसे आप वुदू करते ना तो आप उसमें चुल्लू बनाते हैं हाथ का, यानी कुल्ली करने के लिए, या इस तरह से हम अपने हाथ को थोड़ा राउंड करते हैं और जो हमारी जो फिंगर्स हैं वो जरा ऊपर आ जाती है ना, बिल्कुल इस तरह से आपने अपनी टंग की शेप थोड़ी बनानी होती है कि आपकी टिप ऊपर आए। ठीक है, आपकी टिप ऊपर आए, अगर आप उसको स्ट्रेट रखेंगे ना, यूं स्ट्रेट रखेंगे तो आप फिर जब बोलेंगे तो वो टॉप लगेगा, नेचुरली टॉप लगेगा, आप टिप को लगा ही नहीं सकते। तो आपने टिप की क्या पोजीशन करनी होती है, थोड़ा सा यूं ना सर्कल सा बना के आप अपनी टिप को ऊपर लेकर आए ताकि जहां आप अपनी टिप को हिट करना चाह रहे हैं वो प्रिसाइजली वहां पर हिट करे। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी टिप की थोड़ी शेप करनी है, टिप को मखरज के ऊपर हिट करने के लिए। तो टिप ऑफ टंग आपकी जाके कहाँ लगती है, एग्जैक्टली गम लाइन के ऊपर। ठीक है, गम लाइन के ऊपर लगती है। और सबसे पहले अगर हम टा को देखें तो आपने इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, नंबर वन मेक श्योर यू आर यूजिंग द टिप ऑफ द टंग एट एट। ठीक है, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके मखरज से रिलेट नहीं करती, मगर जितना आप अपने माइंड में रख सकते हैं आप इसको रखें इंशाल्लाह। इनको हम बाद में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप साउंड के लिए जितना आपके जहन में रखते हैं ये तो आपने रखना ही रखना है कि यूज योर टिप ऑफ द टंग फॉर दी टा, और कहाँ हिट करेंगे एग्जैक्टली गम लाइन के ऊपर। सही, ये दैट्स कंपल्सरी। बाकी एडिशनली आप जितना याद रख सकते हैं आपकी साउंड की परफेक्शन के लिए अच्छा होगा। जब ता साकिन होता है तो हिट करने के फौरन बाद हम अपनी टिप को मखरज पे ही रखते हैं, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपने एयर ब्लो करनी है। रोल नहीं करना, लेकिन टिप को ऊपर लेकर आए, ठीक है? अगर स्ट्रेट टंग रखेंगे ना तो वो फिर टॉप लगेगा, फिर टिप नहीं लगेगी। टिप को थोड़ा सा कर्व करके ना, टिप को लगाने की कोशिश करें, थोड़ा कर्व करके उसको ऊपर लेकर आए और टिप को लगाने की कोशिश करें। तो आपने क्या करना होता है, साकिन टा में हिट करने के फौरन बाद थोड़ा सा आपने वहां पे उसको स्पेस देनी है, मखरज से नहीं जबान हिलानी। अत, दैट्स अ डिफरेंट साउंड। अत, इसमें मैं जबान हिला रही हूं मखरज से, मखरज के ऊपर टंग रख के मैंने उसमें से सिर्फ हल्की सी एयर ब्लो करनी है। अत अत, ये साउंड आनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी टू मच। अत, ये नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अत, ठीक है? यही काम आप करते हैं जब आप हरका बोलते हैं। हरका में आप क्या करते हैं, पहले आपकी टिप लगी हुई होती है, आप अपनी टिप को अकॉर्डिंग टू हरका पार्ट करते हैं, अलग करते हैं मखरज से। टा टी टू, तो इसमें भी ये साउंड ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ता ता ती तू। एक तो ता साउंड जो है वो टॉप लगने से ज्यादा ज्यादा टॉप के इस्तेमाल से आती है, लेकिन आपने ना इसमें टिप के शार्पनेस के साथ आपने इसमें हल्की सी एयर रखनी होती है। जब आप अलग करते हैं तो मेक श्योर के टिप की शार्पनेस के साथ एयर हल्की आए। टा टी टू, टा टी टू, इस तरह से। सही, बिल्कुल एग्जैक्ट उर्दू का ता नहीं है ये, राइट? अच्छा, अब हम आ जाते हैं दाल के ऊपर। देखिए, अगर आप इतना टॉप यूज कर रहे हैं कि आपकी टिप स्किप हो रही है, दैट्स रॉन्ग। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि जितनी शार्प टिप यूज करने की कोशिश करेंगे आपकी साउंड उतनी बारीक आएगी। टॉप की इन्वॉल्वमेंट से ये साउंड आती है, ता ता, जो हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है? तो जितना रिड्यूस कर सकते हैं ना, यानी आप अपने ऊपर बर्डन ना लें, मगर जितना कोशिश करें जितना रिड्यूस कर सकते हैं आप पार्ट ऑफ टंग रिड्यूस करें और टिप के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है? हल्का फुल्का मुझे लगता है टॉप यूज हो रहा होता है, मगर नॉट टू मच। अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो साउंड पे इफेक्ट दे रहा है, इट मींस के आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? देखिए साउंड के अंदर डिफरेंस देखिए ना, चा चा ती टू, ता ती टू। मुझे तो इसमें वही वो बारीकी वाली जो साउंड है उसका डिफरेंस लग रहा है। आई एम नॉट श्योर अगर आप इसको फील कर पाए, तो ये जो है ये आपने इसको ध्यान में रखना होता है। सही, अच्छा, फिर हम आ जाते हैं दाल के ऊपर। सेम थिंग इज फॉर द दाल, कि आपने सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यूज योर शार्प टिप ऑफ द टंग, ठीक है? दा दा और दा दा, ये जो है टिप और टॉप का डिफरेंस आ गया। फिर दूसरा ये कि इसमें आपका स्ट्रॉन्ग हिट लेटर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ता भी स्ट्रॉन्ग था लेकिन ता लेटर दाल से वीक हो गया क्योंकि उसमें हमने एयर निकाल दी। अब इसमें हमने एयर नहीं निकालनी, इसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है अद, और जब ये साकिन होता है तो आप बाउंस करते हैं अद दा दा दी दू, जैसे डीम के लिए था। मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्ट्रेंथ वाले लेटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले लेटर्स हैं, इनको बोलने का क्या तरीका होता है, जब आप मखरज पे लगाते हैं हल्का सा प्रेशर ऐड करें, और जब आप उन्हें पार्ट करते हैं तो स्ट्रांगली पार्ट करें, मतलब अलग करते हैं जब दो पार्ट दो बॉडीज को तो आप स्ट्रांगली उनको अलग करें। दा दा टिप और जो गम लाइन है वो थोड़ी स्ट्रांगली एक दूसरे से अलग होगी। दा दी डू अद, ठीक है, इस तरह से. एंड द लास्ट लेटर इज दो. दो की जो साउंड है वो भी जब आप हिट करेंगे तो टिप यूज करेंगे. फिर ये इसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, ठीक है. आपने जब पार्ट करना है तो आपने थोड़ा प्रेशर ऐड करना है. फिर ये हैवी लेटर है. अत दो, इसमें भी बाउंस होगा जब ये साकिन होगा. दो बुई दो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एयर के साथ बोलते हैं, लाइक थौ थौ करके थौ. तो मेक श्योर के ना थौ दो दो कि आपकी जो साउंड है वो इतनी स्ट्रांग हो कि उसमें एयर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एयर नहीं होनी चाहिए. सही है. और इसमें भी आपने वही काम करना है कि जब आप टिप को मखरज के ऊपर हिट करें हैं तो हल्का प्रेशर ऐड करें, क्योंकि प्रेशर से आपका जो लेटर है उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है. सही है. आप हल्का प्रेशर ऐड करें और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें. सही. हरूफ उन्नत आयत है ये. अभी अगर आपका कोई सवाल है पीछे वाले मखारिज से रिलेटेड या हरूफ उन्नत आयत से रिलेटेड, आप कर सकते हैं. जी बिल्कुल. इट्स अगेन फ्रॉम द टिप. हल्की फुल्की टॉप लग रही है, दैट्स ओके, लेकिन आपकी टिप स्किप नहीं होनी चाहिए. जहां आपकी टिप स्किप होगी और बहुत ज्यादा टॉप लगने लग गया, वहां पर जो साउंड है वो इफेक्ट होने लग जाएगी. जी, दाल का वही मखरज है जो टा और दो का है. टिप ऑफ टंग सामने के जो ऊपर के दो दांत हैं उनकी गम लाइन के साथ लगती है, उस पॉइंट से लगती है जहां पर आपका कैल्शियम पार्ट स्किन के साथ मीट कर रहा होता है. साकिन गोल है. हवा बाहर को निकालने के लिए कोई टिप प्लीज. कौन से लेटर के लिए आप कह रही हैं? चा में एयर आती है ना, और बॉ में एयर नहीं होगी. साउंड इसकी चा की तरह होती है मगर इसका हेट और इसकी क्वालिटीज दाल की तरह होती है. अच्छा, गोल हा जब सुकून के साथ हो. गोल हा, यू मीन गोल टा. गोल हा की बात करिए या गोल टा की बात करिए? गोल हा. अच्छा, जैसे रब्बा हू, तो जब हम उसे साकिन करें रब्बा. ओके, सही जी. इसमें आपने यानी हा को इटसेल्फ स्ट्रांग रखना है. उसकी साउंड भी थोड़ी देर तक आती रहती है और एयर भी बाहर आती है. रब्बा रब्बा, इस तरह से. रसूलहू, सो रसूला. आप उसे टाइम दें तो आई होप कि एयर तो खुद ही आ जाएगी. बस मखरज का, उसके मखरज का ख्याल रखें और टाइम दें थोड़ा. एकदम से आवाज को खत्म ना करें. रसूला ला, यू नहीं, ला. सही, इंशाल्लाह. बॉ इज हैवी लेटर है तो सिंपल ता से डिफरेंट होगा. बॉ नो एयर इन एंड. हाँ जी, ता से हैवी होगा लेकिन जो एक और डिफरेंस है ना, यानी चा की तरह है, हैवी होगा, मगर जो एक और डिफरेंस है वो ये भी कि चा में एयर आती है ना, थॉ नहीं बोलते. यानी थॉ आप इसको हैवी करें तो, चा को अगर आप हैवी करें तो वो थॉ बन जाएगा, दैट्स रॉन्ग. क्योंकि चा में से आपने एयर निकालनी होती है, एयर निकाल के फिर आप उसे हैवी करेंगे. दो दो. मखरज नंबर कौन सा हुआ? जी हमें गिनने पड़ेंगे. सबसे पहले हमने अलजौफ किया, फिर हमने अकसल हलक किया, फिर हमने वसतुल हलक किया, फिर हमने अदनल हलक किया. ये फोर हो गए. देन हरूफुल लहविया में कॉफ किया, देन काफ किया, तो ये सिक्स हो गए. फिर हरूफ शजरिया किया, सेवन हो गए. फिर लाम किया, एट. एंड बॉद नाइन. नून 10, रॉ 11. तो नकदाइये जो है ये हमारे 12 हो गए. जी, अब हमारे टिप के दो और मखारिज रह गए जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और टोटल हमारे 5 रह गए इंशाल्लाह। सही, अब हम रीडिंग करते हैं। जो सिस्टर्स रह गई थी लास्ट वीक, आप लोग पहले हैंड रेस कर लीजिए ताकि आप लोग रीडिंग पहले कर सकें, और फिर इंशाल्लाह बाकी जो सुनाना चाहते हैं वो भी अपनी हैंड रेस कर लीजिए इंशाल्लाह। लेसन हमारा सूरत नबा में से था। बारकुमुल्लाहु फीकुम। जी मैं माइक छोड़ती हूँ, आप फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए लेसन।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. جی اٹس ریلی گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کچھ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، جیسے جب ہم ورڈ پڑھیں گے نا بسملہ میں ورڈ رحمان، تو اس کو ٹائم تھوڑا سا اور دیں، کا ٹائم ہا کے لیے تھوڑا کم تھا، پھر ابھی آپ نے نا ہا کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. اٹس ناٹ ڈاؤن، اٹس کمنگ فرام وسط، یعنی جیسے لا بی سی نا فی ہا، نہیں فی ہا، اس کو آپ نے تھوڑا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ وسط سے آئے. پھر اسی طرح سے فی ہا بغدن، یہاں پر بھی نا یہ جو ہا ہے آپ کا یہ ہلکا سا وسط سے آ رہا تھا، تو اس کو اور ڈاؤن لے کر جائیں، اپسا سے یہ آنا چاہیے. پھر دیکھیے جب آپ نے ورڈ پڑھا نا بردن ولا، تو اس میں آپ کا دال نیزل ساؤنڈ میں ہے، بردن دا نہیں دا دا وداؤٹ غنا، بردن ولا شروبا. صحیح، تو اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ دال میں ناک میں آواز نہ جائے. پھر کامنلی جو کاف آ رہا تھا نا، کاف میں آپ کی بہت زیادہ، ایکچولی یہ تھوڑا سا صفات سے ریلیٹڈ ایرر ہے، مگر سن لیجئے مے بی آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس میں نا یہ ہو رہا ہے کہ جو کاف کا ہٹ ہے نا وہ تھوڑا لوز ہے، جس کی وجہ سے جب آپ اس کے اندر ایئر کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ لگ رہی ہے. لائک وکذبوا کتابا، یہ ایسی ساؤنڈ آ رہی ہے. نہیں، ہٹ آپ اس کا اسٹرانگ رکھیں، کیا کیا اس کے اندر ایئر کریں، اور جب آپ ہٹ اسٹرانگ رکھیں گی تو آپ ایئر کریں گی تو وہ خود ہی ریڈیوس لگے گی. لائک کانو کیا، یعنی کا آواز نہیں ہونی چاہیے، بس کا یہ آواز نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو کھا نہیں کہیں گے، کا کانو کا کذبو کذابا. اس کی نسبت نا آپ کا جو ٹا میں ایئر تھی وہ اچھی لگی مجھے، بھی آیا تینا دیٹ واز گڈ، तो आप थी में देखें, जैसे आपने हिप को अच्छा रखा और एयर ब्लो की, बिल्कुल इसी तरह से काफ में भी हम रखेंगे, ठीक है। बाकी जितने मखारिज आपने किए हैं माशाल्लाह, उनमें हा के अलावा बाकी सब आपके अच्छे थे, हा के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لابثین فیها احقابا لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
जी जज़ाकअल्लाहु खैरा। ओके, थोड़ी आपकी आवाज लो थी तो मैं बहुत अच्छे लेटर्स नहीं सुन पाई, लेकिन मैंने कोशिश जो थोड़ी सी की है उसमें से आप देखिए कि एक तो ना थोड़े आपके अलिफ जो हैं वो कहीं कहीं हैवी हो रहे हैं, तो मेक श्योर के अलिफ के लिए ना आपने बिल्कुल लाइट लेटर के बाद अगर अलिफ आ रहा है तो आपने मुंह को खोल के बोलना है, ठीक है। जैसे وَغُسَّاقُ फिर وِفَاقُ, तो फा आपका मुंह खुला हुआ होना चाहिए। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी वला, थोड़ा सा अलिफ के लिए और मुंह को खोले, ठीक है। ये थोड़े से अलिफात आपके हैवी आ रहे। फिर इसी तरह से نَزِيدَكُمْ, काफ के मखरज को थोड़ा वॉच आउट करें, نَزِيدَكُمْ إِلَّا, इसमें आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ला يَبْدُونَ, ड्रीम जो है वो थोड़ा आपका फॉरवर्ड आ रहा था, गम एरिया से आ रहा था, इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये गम एरिया से नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना ये इसको वसत में लेकर जाए। ला يَبْدُونَ حِسَابًا, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए इन आयात को।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ جی مخارج میں نا تھوڑا سا آپ نے ابھی قوف کے مخرج کو اور اسٹرانگ کرنا ہے، यानी थोड़ा सॉफ्ट पैलेट पर और लेकर जाइए, ला यज़ूकूना फज़ूकू विफाको, थोड़ा सा पीछे और जाएंगे, ठीक है? सॉफ्ट, मेक श्योर कि आपकी जो डीप पार्ट ऑफ टंग है वो सॉफ्ट पैलेट को टच हो रहा हो. फिर इसी तरह से ये आयत 29 में जो वर्ड था ना, अहसीनाहु किताबा, इसमें हा को आपने लंबा नहीं करना, आपका हा थोड़ा लंबा हो गया था, इसमें हा स्ट्रेच नहीं होगा. फिर इसी तरह से हा को भी थोड़ा सा टाइम और दें, आपका हा क्विक हो रहा है जिसकी वजह से वो वीक लग रहा है. इल्ला हमीम व गस्साको, ठीक है? ओके. इसके अलावा जजा, यहाँ पे वाव के लिए हम सर्कल करेंगे, इंशाल्लाह अभी हम वाव का मखरज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी. यहाँ पे जजा लिप्स को आगे लेकर जाके वही सर्कल बना के फिर आपने वाव को अदा करना है. और रॉ में जैसे आज हमने जो कॉमनली चीजें देखी ना, उस पर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि रॉ हैवी कैसे करें. लाइक यहाँ आपका रॉ हिल रहा था, शराबा यहाँ लाइट हो गया, तो इसमें आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. बारकुम अल्लाहु फीकुम. ओके, ठीक है, माइक छोड़ती हूँ, आप प्ले कर दीजिए.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسجرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. صدق الله العظيم.
جی جزاک اللہ خیر. اوکے, کہیں کہیں نا آپ کا جو فا ہے وہ تھوڑا ویک تھا, فا پہ پریکٹس رکھے. ابھی ہم فا کے مخرج کو آگے پڑھیں گے بھی, جیسے ان یوم الفصل. یہاں پہ نا فو, ایک تو فو کی ساؤنڈ آ رہی تھی یعنی موٹا ہو رہا تھا یہاں پر, لیکن کچھ جگہوں کے اوپر نا فا اٹسلف اس کی ساؤنڈ نہیں آ رہی تھی, جیسے اف وا جا. اور وفتحت, تو میک شور کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ پرومیننٹ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے 20 آیا میں جو ورڈ ہے وسویرت, یہاں پر آپ کا یا تھوڑا ویک تھا, تو سین کے لیے پورا سرکل کریں اور یا کے لیے آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے اور یا کے مخرج کو تھوڑا واچ آؤٹ کرنا ہے. وسویرت الجبال, ٹھیک ہے؟ پھر 20 میں نا فکانت سروبا, دونوں لیٹرز کو الگ الگ رکھیں, آپ کے لیٹرز مکس ہو رہے ہیں. فکانت سرو, نت سرو یعنی تا اتنا پرامیننٹ نہیں ہوتا اور پہلے ہی نا سین شروع ہو رہا ہے. کانت میر سودا, یہاں پر بھی آپ کا تا اینڈ میم مکس ہو رہا تھا, پیچھے بھی تا اینڈ سین مکس ہو رہا تھا, تو اس میں آپ نے دھیان کرنا ہے کہ لیٹرز مکس نہ ہو, ٹھیک ہے؟ پھر جیسے آج ہم نے تو کے بارے میں پڑھا, تو تو کے اوپر پریکٹس کیجیے, اس میں تھوڑی ایئر آ رہی ہے. لِلطَّاغِينَ میں بھی اور مِنَ الشَّيْطَانِ میں بھی, ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا ہے ان شاء اللہ. اوکے, بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.